आयत नंबर 4 का ताल्लुक जो है ये शिकार से है। मैं आयत सामने रखती हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसमें से कुछ बातें लेंगे अपने लिए। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, वो आपसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या चीज़ हलाल है। कौन पूछते थे? सहाबा कराम पूछते थे। क्यों पूछते थे, यानी पूछने का अमल क्यों करते थे? ताकि मालूम हो जाए तो मान लें। अफसोस की बात है कि आज सवाल पूछे जाते हैं ताकि रुख्सत निकल आए, पता चल जाए कि नहीं जायज़ है। पीछे चूँकि हराम चीज़ों का जिक्र हुआ तो सहाबा कराम के दिल में ख्याल आया कि अच्छा ये बताएं कि फिर हलाल क्या है। फ़र्क है ना सोच का, कोई पूछे हराम क्या और कोई पूछे हलाल क्या, फ़र्क है। तो कहा आओ तुम्हें बताते हैं। कुल उहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात, हलाल की गई तुम्हारे लिए साफ़ सुथरी चीज़ें। कितना प्यारा जवाब है, एक लफ्ज़ में वो हकीकत बता दी जो सारे हलाल हराम की रूह है कि पाकीज़ा खाओ। और पाकीज़ा दो तरह का होता है, तैयब बिज़ात अपने इंग्रेडिएंट्स के अतबार से पाकीज़ा, और एक होता है तैयब बिस सबब। ज़रिया क्या है, आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, पाकीज़ा खाओ यानी चीज़ गली सड़ी ना हो, ख़राब ना हो, हराम ना हो, उसके अंदर खून ना हो, उसके अंदर कोई गंदगी ना हो, शराब ना हो, यानी उसके अंदर कोई ऐसे हराम मटेरियल ना हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स ना हो। और दूसरा तरीका क्या है कि उसको हासिल करने के लिए जो माल इस्तेमाल किया, जो मीन्स थे, जो तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है, वो हलाल होना चाहिए। इस तरीके से तुम खा सकते हो। और तैयब से एक और बड़ी प्यारी तारीफ़ उलमा ने की कि तैयब वो है जिसे हर सलीम उत्तबा शख्स पसंद करे। देखिए जब इंसान की फितरत अच्छी होती है ना, नेचर अच्छी होती है, जैसे बच्चा पैदा होते बच्चे के मुंह को क्या लगाते हैं आप? दूध पी लेते हैं। एक ड्रॉप बच्चे के मुंह में डालें कोक का, कभी नहीं पिएगा। ये है सलीम उत्तबा होना। ये अलग बात है कि उसी को फिर बाद में पी पी के इतने आदि हो जाएं कि हम उसके बगैर रह ही ना सकें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ इंसान के दीन को नुकसान देती हैं हराम की सूरत में, और कुछ इंसान के स्टमक को, उसकी बॉडी को नुकसान देती हैं। आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें हमारे खाने पीने में वो शामिल हो चुकी कि जो ना सिर्फ ये कि हमारे दीन के तकाज़ों के पूरा नहीं उतरती, बल्कि हमारे जिस्मानी तकाज़ों के भी पूरा नहीं उतरती। ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह इस मौजू पर हम आगे जाके बात करेंगे। आगे शिकार के एक तरीके का जिक्र है। फरमाए वमा अल्लम तो मिनल जवारही, और जो सुधाओ तुम शिकारी जानवरों को। कौन है वो? मुकल्लिबीना, शिकार पर दौड़ने वाले। तुअल्लिमूना हुन्ना, तुम उनको सिखाते हो। जैसे कि मिम्मल्लमकुमुल्लाह, सिखाया तुमको अल्लाह ने। यहाँ शिकारी जानवरों की बात है। जब हलाल और हराम की बात हुई तो सहाबा कराम में से कुछ ने शिकारी कुत्ते और शिकारी बाज के बारे में सवाल किया। यहाँ ये बात बता दूँ कि हमारे लिए ये बात शायद इतनी अहम ना होगी, क्योंकि ना हम शिकार खेलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो फ्रीज़र ही भरे रहते हैं हर वक्त गोश्त से, हमने शिकार क्या करना था। लेकिन अरबों का ना सिर्फ ये कि मशगला या उनकी हॉबी शिकार थी, बल्कि गोश्त को हासिल करने का ओनली मीन भी यही था। पीछे हम पढ़ चुके कि अहराम की हालत में जो शिकार की ममानियत है, वो भी असल में एक आजमाइश ही थी कि जिस चीज़ से अल्लाह तुम्हें रोकता है तुम उससे रुकते हो कि नहीं। अब जब ये सवाल किया गया कि अच्छा ये बता दिए कि वो शिकार जो कुत्तों और बाज़ों के ज़रिए किया जाता है, उसके लिए क्या हुक्म है? क्योंकि आज के दौर में तो गन है और मुख्तलिफ तरीक़ों से शिकार किया जाता है ना। उस दौर में सुधाते थे जानवरों के अंदर, अल्लाह ताला ने सीखने की सलाहियत रखी हुई है कुत्ते में, बाज में, कुछ जानवरों में ये सलाहियत है उनकी, जैसे उनके अल्लाह ताला ने ये अंदर उनके रखा हुआ है कि वो शिकार पकड़ सकते हैं। उनका एक पूरा तरीका होता है, उसका अब यहाँ जिक्र है। मैं आयत पढ़ के फिर आपको हल्का सा उसका इजहार करती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, तुम वो खा सकते हो जो मिनल जवारही, जो उन जानवरों से। जवारह का लफ्ज़ है ना जराहा से है, जीम राहा, और जुरहन या जरहन, जुरहन जो है वो ज़ख़म को कहते हैं। जवारे हैं वो जानवर जो ज़ख़म लगाते हैं, शिकारी जानवर इधर मुराद है, क्योंकि जब जानवरों की ट्रेनिंग कर दी जाती है तो वो उसके अंदर सिर्फ ज़ख़म लगाते हैं, उसको खाते नहीं हैं। तो कहा कि तुम उनको ले सकते हो, शर्त क्या है कि तुमने उनको अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ट्रेन किया हो। फिर जब वो ले आए फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, फिर खा लो उसमें से जो वो तुम्हारे लिए रोक लेते हैं। और खाने से पहले वज़्कुर उस्मल्लाहि अलैह, उस पर अल्लाह का नाम लो। कब लो? खाने से पहले नहीं, उस जानवर को भेजने से पहले अल्लाह का नाम ले लो। तो फिर क्या होगा, अगर वो जानवर ले आता है तो उस जानवर को ज़िबा करो और खून बहा दो, तो दोनों शर्तें पूरी होंगी। किसी जानवर को ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह अकबर करके जो ज़िबा करते हैं ना, वो काम कब होगा? जब ऐसे जानवर को छोड़ा जाएगा। वो ले आता है, उस वक्त जानवर अभी जिंदा होता है, तो फिर उसके ऊपर छुरी चला के उस नीरख काट के खून निकाल के फिर उसके बाद उसको खा सकते हैं। और कहा कि वत्तकुल्लाह इन अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह से डरते रहो कि वो जल्द हिसाब लेने वाला है। आयत से आपको ज़्यादा बात वाजे नहीं हुई होगी, तो बुलेट पॉइंट्स में कुछ चीज़ें लिख लीजिए जिसका ताल्लुक शिकार के साथ है। पहली बात है कि शिकार हलाल है लेकिन चंद शराइत के साथ। पहली शर्त उसमें क्या है कि जो जानवर वो शिकार करेगा उसको सुधाया हो, ट्रेंड हो, टेम्ड हो, यानी उसको पूरा एक तरीका सिखाया जाए, वो सीखा हुआ जानवर हो। और सिखाने के अंदर क्या होता है कि जब किसी भी जानवर को भेजा जाता है तो वो खुद नहीं खाएगा, और जब वापस आएगा तो उस जानवर के ऊपर किसी और जानवर के दांत नहीं होने चाहिए। तरीका इसका क्या होता है कि जब जानवर को भेजते हैं, जैसे कुत्ते को भेजते हैं या कोई भी ऐसा जानवर है, तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ते हैं, हाँ, फिर उसके बाद वो उस जानवर के किसी ऐसे हिस्से को पकड़ता है कि जिसको पकड़ने से वो जानवर मरता नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई चीज़ आप डाल के तो कैच कर लेते हैं ना किसी चीज़ को, बिल्कुल ये समझ लें। अब वो कुत्ता आता है, या उसने कान से पकड़ा होगा या उसकी दुम से पकड़ा होगा, उसको पता होता है मैंने कहाँ से पकड़ना है, उसकी रग को नहीं पकड़ता। अब जब वो वापस लाएगा तो वो जानवर जिंदा होगा, आप उसको पकड़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा कर देंगे, तो उस तरह से खाया जा सकता है। फिर दूसरी बात ये कि कोई जानवर अगर खुद ब खुद किसी को पकड़ के ले आए तो नहीं खाएंगे, क्योंकि आपने उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के नहीं भेजा। फिर अगली बात ये है कि अगर कोई जानवर जो वहाँ गया है, अगर उसमें से उसने कुछ हिस्सा खुद भी खा लिया है तो नहीं, क्योंकि मिम सकना अलैकुम, जब वो खुद ना खाए, बिल्कुल सही सालम जानवर होगा तो फिर उसको खाया जाएगा। फिर इसी तरह कुछ और भी शरायत हैं, लेकिन चूंकि ये मसला हमारे यहाँ इतना आम नहीं है और हम में से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरीके से गोश्त लेगा, आप तो देख के भी भाग जाएंगे कि हमें तो इससे पता नहीं क्या होता है, बस तो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते। तो इस पे अल्लाह ताला ने उन लोगों को एक हुक्म बता दिया कि देखो तुमने शिकार कर तो लिया है, लेकिन याद रखो कि ये जो सब होगा इसी चीज़ में खो के ना रह जाना, और इससे ज़्यादा और भी काम मौजूद हैं, दीन, नमाजें, रोज़े, उसको ना छोड़ो। इसीलिए आखिर में क्या, वत्तकुल्ला, जैसे आज के बच्चे वीडियो गेम्स खेलते होंगे ना, अरब लोग इस तरह शिकार करते थे, उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ था, उनके बच्चों के पास भी तीर, तलवारें, नेजे और इस तरह की चीज़ें होती थी। तो कहा इन सब चीज़ों को छोड़ो, अल्लाह ने जो इजाज़त दी है वो एक ख़ास चीज़ के साथ है। अब तुम क्या करो कि अल्लाह से डरते रहो क्योंकि वो जल्द हिसाब लेने वाला है। उसके बाद आखिरी आयत है लेसन की, बहुत अहम आयत है, एक से बहुत ज़्यादा इसमें मसाइल हैं। कोशिश करूँगी कि जहाँ तक एक मज़मून है वहाँ तक हम रोक के बात कर लें ताकि फिर पूरी आयत का हक अदा हो सके। फरमाया अल-यौमा, आज के दिन। ये कौन सा अल-यौम है? ये वही अल-यौम है जो पीछे अल-यौम अकमलतु लकुम था, यानी अल्लाह के नबी का दौर। इस लफ्ज़ को समझेंगे तो तफसीर समझ आएगी। इसका टॉपिक क्या है? क्या अहले किताब औरतों से शादी हो सकती है, और क्या हम नॉन मुस्लिमों के घर का खा सकते हैं कि नहीं? बहुत अहम मौजू है। तो अल-यौम के लफ्ज़ को पहले समझ लीजिए कि अल-यौम की जो मारूफ तफसीर हमारे असलाफ ने की वो क्या थी, कि जिस वक्त इस्लाम गलबे की हालत में हो, जब मक्का फतह हुआ उसके बाद, जब हज के मौके पे आयतें नाजिल हो रही थी, सूरत मायदा के ये अहकाम नाजिल हो रहे थे, उस वक्त इस्लाम पीक पे था, इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन था। तो अल-यौम इस्लाम का गलबा मुराद है। क्या हो गया आज के दिन? ओहिल्ल लकुम अत्तैयिबात, तैयब चीज़ों को हलाल कर दिया गया। एक जनरल रूल है, हर तैयब चीज़ खा सकते हो। ये एक बिल्कुल वही बात है जो पीछे भी गुजर गई कि सहाबा ने पूछा क्या खाएं, तो कहा कि तैयब और पाकीज़ा चीज़ें खा लो, गंदी चीज़ें ना खाओ। अब आप बताएं कि आप मक्खियों वाले दही बड़े खाएंगे तो तैयब होंगे वो? गला सड़ा फल खाएंगे तो वो तैयब होगा? नहीं होगा ना। तो इस्लाम गंदा खाने से रोकता है। मक्खियों की भिन भिन करती हुई जलेबियाँ अगर आप खाएंगे तो बीमार होंगे ना। अल्लाह करे कि हम मुसलमानों को भी ये बातें समझ आ जाएं कि तैयब कितना अहम है। साफ़ सुथरा घर पकाते हुए जितना सफाई के साथ पकाएंगे उतना खाना हाइजीनिक होगा। अगली बात, वताम्लसीना ऊतुल किताब हिल्लुल्लकुम, और खाना अहले किताब का हलाल है तुम्हारे लिए, और वताम्कुम हिल्लुल्लहुम, और खाना उनका हलाल है तुम्हारे लिए। ये नंबर टू लगा लें इस पे। ये दूसरा मौजू है इस आयत का, अहले किताब का खाना तुम खा सकते हो और तुम्हारा खाना वो खा सकते हैं। कौन है अहले किताब? पहली बात, वो अहले किताब जो यहूदियत और नसरानियत के असल अकायद पे कायम हो। तौरात और इंजील जब अपनी असल शक्ल में नाजिल हुई उसमें अल्लाह को एक मानने का हुक्म था, नबियों को नबी के दर्जे पर रखा जाता था, लेकिन बाद में लोगों ने उसमें इतने इजाफे कर करा के क्या किया कि हज़रत ईसा को खुदा बना दिया, यहूद ने हज़रत उज़ैर को खुदा बना दिया। अल्लाह ताला ने यहाँ इस बात का तस्करा करके बता दिया कि अहले किताब का खाना तुम पे हलाल है। तो गोया कि अहले किताब से ये जहन में रहे कि ठीक है, बुराइयाँ हो सकती हैं, बशरी खताएँ हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट वो ख़ुद को अहले किताब कहलाते हों, एथियस्ट एग्नोस्टिक ना कहने लगें, या अपने आप को दहरियत के दर्जे पे ना ले जाएं, तो इनका खाना तुम खा सकते हो। दूसरी बात है कि यहाँ लफ्ज़ ताम से क्या मुराद है, इसको बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी बात समझ जब नहीं सही आती तो उसके बाद फिर वाकई कई मसले उठ जाते हैं। तो यहाँ ताम से मुराद क्या है? अहले किताब का हलाल खाना। इस लफ्ज़ को जनरलाइज़ करके लोग इस गलती पे चले गए कि हर खाना खा लो, अहले किताब का वो खाना खा सकते हो जो तुम अपना भी खा सकते हो। पीछे बात हुई हराम है तुम पे सुअर का गोश्त, तो क्या फिर वो अगर किसी अहले किताब के घर जाओ और तामुल्लज़ीन उतुल किताब हिल्लुल्लकुम कह के खा लो? नहीं खा सकते। अहले किताब का वही खाना तुम खाओगे जो तुम अपना खा सकते हो, एक मतलब तो इसका ये समझ लीजिए। दूसरी बात आप देखिए कि ताम के लफ्ज़ में कौन सा ताम है जो इस्लामिकली ज़िबा किया, यानी अगर इसको गोश्त पे लें, मीट प्रोडक्ट्स पे लें, क्योंकि जहाँ तक आती है बात ग्रेन्स की, दालों की, सब्जियों की, स्नैक्स की, वो तो हर एक का खा सकते हैं, यहाँ वो मुराद नहीं है। यहाँ ख़ास तौर पे अहले किताब का ज़बीहा मुराद है, जो सुन्नत तरीके से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो चुका हो वो तुम खा सकते हो। लेकिन अगर इसके अंदर तुम्हें लगता है कि उन्होंने शराब बना दी, नहीं खा सकते। केक खाते हैं और उसके अंदर आपको लगता है कि शराब के कतरे डलते हैं, नहीं खा सकते। आप उनके घर से फिश ही खा रहे हैं लेकिन जिस ऑयल में वो बनी हुई है वो ऐसी फैट से बना हुआ है जो पिग से है, नहीं खा सकते। सिंपल बात, ये जो पहला जुमला था ना कि तय्यिबात, ये असल में इस जुमले की एक किस्म की तमहीद थी कि जब तक कोई चीज़ तय्यब नहीं होगी तुम अपनी भी नहीं खाओगे, अहले किताब की खाने की तो क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो उनका ज़िबा किया हुआ जो है वो तुम खा सकते हो, लेकिन उन्होंने किया हो, कोई अहले किताब है वो कहता है कि मैं बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेके वे पढ़ रहा हूँ और साथ उसका सारा गोश्त खून निकाल देता हूँ, खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर कोई अहले किताब ये कह दे कि मैंने ये कुछ नहीं किया, तो फिर आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते। इसी पे पीछे हम बात कर चुके कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इन चीज़ों पे हमें रोक दिया। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर अहले किताब के अंदर जो चीज़ खाने की हम खा रहे हैं उसके ऊपर हमें शक है, मिसाल है कि वो तो कहते हैं कि हमने किया है लेकिन आपको शक है, इसमें ना सिर्फ ये कि अहले किताब बल्कि मुसलमान, वही कोई आपको हलाल के नाम पे बेच रहे हैं रेगुलर स्टोर्स में, वो कहते हैं हलाल है, अब क्या करें? ये बहुत मारूफ मसला है, हर जगह ये दुनिया में उठता है और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, टॉप 10 पे आप इसको दे सकते हैं। जिस नए शहर में जाएं आपसे लोग सवाल ये पूछते हैं कि क्या रेगुलर मीट खा सकते हैं? नहीं। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि ये जो हमारे स्टोर्स पे बिक रहा है इसमें भी शक है, कोई कहता है उधर से नहीं आ रहा, इधर से नहीं आ रहा, और इस तरह के बहुत शोशे उठते रहते हैं। अब इसका क्या जवाब है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बाज़ दफ़ा हमारे पास न्यू मुस्लिम, यानी अभी नए नए इस्लाम में आए हैं, वो गोश्त भेजते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि ये हलाल गोश्त है, लेकिन हमें शक है कि अभी ये जैसे बच्चे हैं, जैसे बच्चा आपको पानी दे ना तो आपको शक ही रहता है कि इसने हाथ धोए थे कि नहीं, हालांकि वो कितना ही साफ़ सुथरा क्यों ना हो, बच्चे के हाथ से चीज़ लेके बहुत थोड़े लोग खाते हैं कि इसके हाथ गंदे होंगे, शक आता है ना। अहले किताब न्यू मुस्लिम गोश्त भेजते थे, मोहब्बत से भेजते थे, लेकिन हज़रत आयशा ने कहा कि हमें लगता है कि नए हैं, पता नहीं इन्होंने सही भी तरह ज़िबा किया है कि नहीं, कुछ सही हाथ को धोए हैं कि नहीं, तो क्या करें? तो आपने कहा कि अगर ऐसा कभी हो तो तुम उसको खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, तुम अल्लाह का नाम ले लो, ये इस्तिस्नाई बात है। इस एक हदीस को आज अल्लाह माफ़ करे हम सबको, इसको मिस कोट करके लोगों ने क्या कुछ जायज़ कर दिया और क्या दूसरी चीज़ की तरफ चले गए। मैं सारी बातों को अगर समराइज करती हूँ अपने जहन में और वही चीज़ आपके सामने रख दूँ, तो इस पूरे टॉपिक को इस तरह समेट लीजिए कि जो तो कह ही नहीं रहे कि हमने इस्लामिकली ज़िबा किया है, वो रेगुलर स्टोर्स पे बिक रहा है, वो मैकडोनल्ड पे पक रहा है, वो कैंटकी में पक रहा है, ऑफ कोर्स उसका तो इससे ताल्लुक ही नहीं, वो तो ताम है ही नहीं, ताम तो वो है जो कोई कहता है, उसको तो आप किसी सूरत में अपने लिए हलाल नहीं कहेंगे। और उसकी बुनियाद में जो आपने कहा कि बात है कि भाई फलां अरब खा लेते हैं, मेरी खुद कुछ दोस्तों और स्टूडेंट्स में से ऐसी हैं जो काम करती हैं बच्चों के जो होते हैं डे केयर्स में, तो वो कहती हैं कि हमारे पास अरब बच्चे भी होते हैं, पाकिस्तानी बच्चे भी होते हैं, तो जब ब्रेक का वक्त होता है तो बाज़ अरब बच्चों के खानों के टिफ़िन में मैकडोनल्ड के बर्गर और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अब इसका हम क्या करें, क्या हम बच्चों को खिलाएं, ये कुछ इस तरह का यानी एक सवाल उठता है। तो आप देखिए कि यहाँ वही बात याद रखें कि ये एक आलिम की इज्तिहादी गलती थी। तफसीरे मीनार के मुफस्सिर थे, अब्दहू उनका नाम था, उनसे एक गलती तो ये हो गई कि अहले किताब में उन्होंने सबको शामिल किया, कुफ्फार को, मजूस को, हिंदुओं को, सिखों को शामिल किया, हर एक को कहा कि ये इसमें आ जाते हैं, और दूसरा ताम के अंदर उन्होंने हर खाने को जायज़ कर दिया शर्त के बगैर। इसकी बुनियाद पे जब ये फतवा मिस्र में आया था, तो एक कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ कि उस वक्त मिस्र के और दुनिया के तमाम अकाबिर उलमा ने इसको गलत करार दिया। इस पर बहुत सारे पम्फलेट्स और मजमून लिखे गए, मुफ्ती अब्दुहू को ओहदे फतावा से माजूल करने के मुतालबे हर तरफ से हुए। इधर मुफ्ती साहेब मौसूफ के शागिर्दों और कुछ मगरिब ज़दा यूरोपियन माशरे के दिलदादा लोगों ने बहसें चलाईं, क्योंकि ये फतवा उनकी राह की तमाम मुश्किलात का हल था कि यूरोप के यहूद नसारा बल्कि देहरियों का हर खाना इनके लिए हलाल हो गया। लेकिन आप देखिए कि इस्लाम का ये मौजज़ा है कि बड़े से बड़े आलिम से ही गलती क्यों ना हो जाए, इस्लाम उसको भी खोल के रख देता है। नतीजा क्या हुआ कि अब अरब थे ना, इजिप्शियन थे, इनकी रोशनी में जो लोग उस सोच के हो गए, आज भी वो कहते हैं कि खा सकते हैं। हमारे सामने कुरान में जो बात लिखी है, मेरा ख्याल है कि वही काफ़ी होती है। तो ऐसी चीज़ जिसमें कोई कहता है कि मैंने नहीं किया, उसको तो आप नहीं खाएंगे। दूसरे दर्जे पे एक ऐसा शख्स जो हलाल बेच रहा है, आपके हमारे पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, इंडियन स्टोर्स हैं, इवन कोई कंपनी ऐसी है जो हलाल करके बेचती है, जैसे कॉशर मीट है और आपके रेगुलर स्टोर्स में मिलता है, अब वो दावा करते हैं हमने किया है, अब क्या करें, खा लें। देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों के जाहिर पे कयास करो, हम जब लोगों के छुपे हुए मामले खोलेंगे ना, उनको हलाक कर देंगे। आपके शहर में मेरा ख्याल है कि जो मेरी नज़रों में गुजरते आते जाते बीसियों ग्रोसरी स्टोर्स हैं मुस्लिम, इस कोने में भी, इसमें भी है, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा यहाँ मुस्लिम ग्रोसरी स्टोर्स हैं। अगर आप लोग हर वक्त इस परेशानी में है कि इसका हलाल है कि नहीं उसका नहीं, क्या होगा? जैसे मस्जिदें लड़ती हैं ना आपस में, मस्जिदों वाले, इस तरह फिर ग्रोसरी स्टोर्स भी लड़ेंगे। और ये यहाँ नहीं, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका कनाडा का भी मसला है। आप क्या करें, नहीं दिल मानता ना, ना खाएं। मिसाल है, आपको किसी एक के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसी जगह से लेता है जहाँ से सस्ता मिल जाता है और दिस एंड दैट, और ऊपर स्टैंप लगाता है, पता चल गया ना, दा मा यूरिबिक, दो लफ्ज़ों की हदीस है, दा छोड़ दो, मा यूरिबिक जो तुम्हें शक में डाल दे, इला मा ला यूरिबिक उसको ले लो जिसमें शक नहीं, उधर से ना लें उधर से ले लें। अगर आपको किसी की जगह लगता है कि ये सामने काटते हैं हाथ से काटते हैं, ले लीजिए वहां जाके ले लें, थोड़ा महंगा मिल जाएगा, थोड़ा दूर से मिलेगा, ले लें, लेकिन बेजा फितना नहीं डालना चाहिए। जो चीज़ इस्लाम में नाकाबले बर्दाश्त है ना, वो मुसलमान का दूसरे मुसलमान के बारे में गलत राय, गलत कमेंट देना और उसकी वजह से फितने डाल देना। फिर आगे जाके इस पर मज़ीद बात कर लेंगे। आखिरी हिस्सा देखिए आयत का, तीसरा हिस्सा यहाँ से शुरू होता है, इसका टॉपिक है क्या अहले किताब, जिसको किताबिया औरत कहते हैं, उससे निकाह जायज़ है? यानी एक मुस्लिम लड़का एक गैर मुस्लिम किताबिया लड़की या औरत से निकाह कर सकता है? तो फरमाया वल मुहसनातु, और पाक दामन औरतें। कहाँ पढ़ा ये लफ्ज़ पहले? पहले पारे में। तो पहली शर्त ही क्या लगा दी, पाक दामन। यहाँ मुहसनात का लफ्ज़ कौन से मानी में? पाक दामन, साफ सुथरी, गंदी औरतें नहीं, मर्दों से ताल्लुकात वाली नहीं, गर्ल फ्रेंड्स बन के रहने वाली नहीं, बिल्कुल सीधी सादी, साफ सुथरी, मुहसनात के दर्जे की, मिनल मोमिनात, पहले ईमान वालियाँ का। हम इस पे तो बड़ी बहस करते हैं कि क्या किसी लड़के ने जो शादी की है वो अहले किताब और लड़की से की है वो अच्छी है कि नहीं, इसको भूल जाते हैं कि जब मुसलमानों में बेटों के शादियां करते हैं तो क्या वाकई जो आने वाली लड़कियां वो भी मुहसिना हैं कि नहीं। क्योंकि जब हम रंग किसी एक कप पानी के अंदर जाते हैं तो रंग चढ़ ही जाता है। अगर एक लड़की मुसलमान है लेकिन वो वेस्टर्नाइज हो चुकी है, उसकी सोचें, उसके कपड़े, उसका हाल हुलिया, तो उससे भी शादी करने से पहले सोच लीजिए कि क्या वाकई ये मुहसिना है भी कि नहीं। वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह मुसलमानों की पाक दामन, साफ सुथरी, शरीफ लड़की से शादी की जा सकती है, इसी तरह अहले किताब की पाक दामन लड़की से भी शादी की जा सकती है। शरायत क्या है? इजा जबके आ तई तुम हुन्ना, दे दो तुम उनको, किनको? इन पाक दामन लड़कियों को, उजूरा हुन्ना, उनके हक में। ये शरायत थी ना, रिवीजन हो रही है पांचवें पारे के पहले सबक की। वही शरायत अहले किताब औरत से शादी की जो मुसलमान औरत से शादी की है कि हक महर इसका भी होगा। दूसरी शर्त मुख्सनीना, कैदे निकाह में रखने वाले, यानी टाइमली मैरिज नहीं है, दो चार दिन की मुता नहीं है, पेपर मैरिज नहीं, मुख्सनीन कैदे निकाह में रखने वाले, नाम की शादी नहीं बल्कि हकीकी शादी होगी। अगली बात गैर मुसाफहीन, ना के बदकारी करने वाले, सिर्फ पानी बहाना मकसद नहीं है, मतलब क्या है कि उस शादी को निभाना भी है, बच्चे भी पैदा होंगे, उसके बाद वो शोहर बीवी बन के भी रहेंगे। और अगली शर्त क्या है? वला मुत्तखिजी अखदान, और ना छुपी दोस्तियां करने वालियां। पीछे ये लफ्ज़ गुजरा है लौंडियों के लिए, यहाँ आज़ाद औरतों के लिए, कि शादी होगी लेकिन छुपी दोस्तियां नहीं होंगी। ये नहीं कि पहले कई साल तक लिविंग टुगेदर होगा, बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप होगी, और उसके बाद फिर दिल चाहा तो शादी कर ली, दिल चाहा तो शादी ना की। इस वक्त ये सारी शरायत पूरी करेगा कोई तो इजाज़त है, और वमई यकफुर, और जो कोई कुफर करेगा बिल ईमानी, ईमान का, यानी ईमान के बाद अब कुफर पे आएगा, फ़कद हबीत अमलुहू, तो बेशक उसके अमल ज़ाया हो गए, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वह आखरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। आयत तो पूरी हो गई, हम इसमें से क्या बातें समझेंगे? पहली बात है कि जिस तरह एक नेक या पाक दामन मर्द के लिए एक मुसलमान पाक दामन लड़की हलाल है, शर्त है। देखिए नमाजी के लिए नमाजी है, अगर एक लड़का नमाज़ पढ़ता और लड़की नमाज़ नहीं पढ़ती, अगर आप बहुत आगे जाके पूछेंगे तो निकाह ही नहीं होता। वो ऐसे ही जैसे एक मुसलमान और एक काफिर का निकाह करना चाहते हैं, दोनों नहीं पढ़ते कर दें, दोनों ही काफिर हैं, एक मिसाल दूंगी। लेकिन नेक के साथ नेक, आगे बात आएगी सूरत नूर में, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन और अलखबीसातु लिलखबीसीन में। दूसरी सूरत यह है कि अगर कोई लड़की सीधी सादी पाक साफ है, उसके मर्दों से ताल्लुकात नहीं है, अहले किताब में से पैदा हुई, उधर रही, अब उसको इस्लाम से कोई बुगस नहीं है, तो होगी कि नहीं, इसको समझ लेते हैं। बाज़ कहते हैं कि ऑफ कोर्स हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाज़ आयत के पहले लफ्ज़ अल यौम के ऊपर अटकते हैं, कहते हैं अल यौम आज का दिन नहीं है, ये वही दिन है जब नबी सल्लम का ज़िंदगी का आखिरी दौर था, इस्लाम गालिब था, उस वक़्त इस्लामिक निज़ाम था, लिहाजा आज के दौर में अगर इस्लाम गालिब है, यानी मुस्लिम व्यूज़ क्लियर हैं उस मुल्क में रहते बैठते हुए, अगर उनका बाद में तलाक़ का या बच्चों का कोई मामला बनता है तो इस्लामी तरीके से अगर उनके समझौते होने की उम्मीद है तो कर दो। लेकिन ऐसे लोग फिर कहते हैं कि दारुल कुफर या दारुल हर्ब में रहने वाली किताबिया से निकाह नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा कि फिर अगर बाद में मसले उठेंगे तो वो तो उसका मजहब उसको शेल्टर करेगा। इन दोनों राय के बीच में जो एतदाल वाली राय है वो क्या है? आम हालात में ये पसंदीदा नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने अहले किताब औरतों से शादी करने की कोशिश की, तो हज़रत उमर ने कहा कि ये क्या काम शुरू हो गया, ऐसी औरतों के साथ जब शादी करोगे तो मुसलमान लड़कियों से कौन करेगा। और बाज़ जगह ऐसा भी हुआ कि आपने कुछ फिर लोगों को कहा कि तुम इनको तलाक दो, क्योंकि ऐसी औरतें जो हैं ये घरों में फहाशी लाती हैं। अगर एक औरत का ऐसे मर्द से निकाह हो जाता है जो साफ सीधा सादा शरीफ मर्द है, लेकिन उस औरत के अगर मामला अच्छे नहीं, तो आप देखिए कि बुराई का असर जल्दी होता है। अगर तो मर्द खुद नेक है ना, आपने बेटों की अच्छी तरबियत की है, उनको सब पता है, फिर तो अगर किसी अहले किताब लड़की के साथ शादी हो जाती है तो उम्मीद की जाती है कि वो उसके ऊपर अपना असर दिखाएगा। और वो शादी ज़रूरत पे मिसाल है कि कोई अकेली लड़की है या उसकी दीन का मामला है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो ऐसी शादियाँ कोई ज़्यादा अच्छे असरात नहीं लाती। किसी से बात हो रही थी, शादी हुई, चंद साल रही, दो बच्चे हुए, उसके बाद अब डिवोर्स चल रही है। ऐसा क्यों चल रहा है? कहा कि वो मेरे दीन पे नक्स करती है, मुझे कहती है रिबा पे घर लो, मैं नहीं लेना चाहता, ये कहती है वो कहती है। भाई शादी क्यों की थी? इसलिए की थी कि ये बड़ी इंक्लाइंड थी, उस वक्त मुझे लगा कि ये दीन से माइल है, अगर मैं शादी करूँगा तो ये अच्छी हो जाएगी। उलमा से भी पूछा, उन्होंने कहा कर लो, लेकिन शादी के बाद हर लम्हे घर में बात होती थी तो कुफर और इस्लाम की होती थी। ऐसी जो हालात होते हैं उनके अंदर फिर अगर देखा जाए तो मैं तो इसको बड़े नीचे के दर्जे पे लाके देखती हूँ कि शौहर और बीवी का ताल्लुक क्या है, मवाफ़कत का, दोस्ती का, प्यार का। शादी हुई, अब अमूमन शादी के बाद इंसान घर में आता है। शौहर बीवी साथ हुए, इस्लाम शौहर बीवी के ताल्लुक के बाद क्या कहता है कि गुस्ल करो, और वो औरत बैठी कहती मुझे क्या, मैंने तो नहीं करना, मैं कौन सी मुसलमान हूँ। चलो मर्द कहता है इट्स ओके नो प्रॉब्लम। हय्या अलस्सलाह, सलाह तो खैरो मिन नौम, फजर का वक्त हो गया। मर्द कहता है मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, वो बैठी हुई है। आप ज़रा गिनते जाएं, सिर्फ 24 घंटे उनको साथ रखें और कितने मौके पे क्लैश होगा। क्लैश से मेरा ये नहीं कि लड़ाई, शुरू में तो दिल चाहता है कि वो मर्दों को तो दूध भी लेने जाते हैं तो बीवी को साथ बिठा लेते हैं, हैं होता है ऐसा कि नहीं? आपको तो नहीं किसी को अपना वक्त याद आ गया? यानी नई बीवी होती है ना तो मर्दों का दिल चाहता है उन जॉब पे भी साथ ले जाएं, वहां जाके भी फोन करते रहते हैं, हैं। अब बताइए कि जब इतना दिल चाहता है हर काम करें, मस्जिदों में भी जा रहे हैं तो साथ ही जाके नमाज पढ़ें, तो आप बताएं कि हर मौके पे वो रिजिस्ट करें, हर मौके पे उसको जाना ही नहीं, वो जुमा पढ़ने जा रहा है वो कह रही है मुझे नहीं जाना, तो वो घर कैसे निभेंगे? फिर इस सूरत में दो ही मामले बनते हैं, या वो उसको उधर ले जाती है या वो उसको फिर दूसरी तरफ ले जाता है। एक जगह किसी शादी में थे तो वहाँ एक ऐसी खातून से पता चला कि उनकी किसी मुस्लिम मर्द से शादी हुई है और पिछले 20-25 साल से वो उनके साथ चल रही है। मैंने ऐसी बात की, बैठ के पूछा, मैंने कहा कैसा चल रहा है, कैसी? तो कहती बहुत अच्छा जा रहा है, वेरी नाइस। कैसे? कहती कि एवरी फ्राइडे मैं उसके साथ मस्जिद जाती हूँ और एवरी संडे वो मेरे साथ चढ़ जाता है। तकाबुल और मामले बराबर के चल रहे हैं। बहरहाल ये मौजू बहुत तफसील तलब है, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जहाँ के हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं। पसंदीदा सूरत तो ये है कि कफ हो, कफ कहते हैं दोनों तरफ बराबरी हो, एक दीन होता है, सोच अच्छी होती है। किसी कोई सोच से कर रहे हैं ना कि वो मुसलमान हो जाएगी तो पहले कर लें, लेकिन ये याद रखिए कि मुत्तखिज़ी अख़दान वाली कैफियत है। अगर एक लड़का पहले ही एक नॉन मुस्लिम लड़की के साथ रहने लगा, किस इस्लाम की तरफ बुलाएगा? मुझे एक ऐसी लड़की मिली बाद में, मेरी बड़ी अच्छी उसके साथ दोस्ती हो गई, कि जो नॉन मुस्लिम थी, एक मुस्लिम लड़के के साथ वो गर्लफ्रेंड बन के रही। गर्लफ्रेंड होने के सूरत में ही आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात इतने बड़े, प्रेगनेंसी भी हो गई। फिर उसके बाद हुआ क्या कि वो शादी जब हुई तो उसके बाद वो लड़की किसी जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तरफ जुड़ी, कुरान उसकी ज़िंदगी में आने लगा, वो मुसलमान हुई। जब वो मुसलमान हुई तो उसने क्या किया आपको पता? सबसे पहले उसी मर्द से तलाक ली। कहती तुम कौन से मुसलमान हो, तुम तो ड्रिंक करते हो, तुम जिना करते हो, तो ये तो कोई इस्लाम ही नहीं है। और एक ऐसा भी वाकया मेरी नज़रों से गुजरा कि शादी के बाद खुद उस लड़के ने उसको छोड़ दिया कि तुम कैसी मुसलमान बन गई हो, मैं नहीं तुम्हारे साथ रह सकता। तो बहरहाल ऐसे सारे मौजूदात के ऊपर हमारे दिल में यही ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें जो भी कहते हैं वो अच्छे हैं। तो इस बारे में बस आखिर में यही कहूँगी कि ये एक रुख्सत है, हुक्म नहीं है, और अमूमन रुख्सतों के मामले में तकवा पर कायम रहना जो होता है ना, वो अहकामात की नस्बत मुश्किल होता है। लोग रुख्सतों में ही इधर उधर फिसलने लगते हैं। तो हर इंसान पहले अपने ईमान को देखे, क्या मुझे अपने दीन का सही इल्म है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाली औरत के रंग में रंगा जाऊंगा। इसलिए अपने आप को फितने में डालने की बजाय इंसान ख़ुद अपने आप को पहले इस काबिल करे कि वो इस्लाम को सही तरीके से समझे। फिर एक अच्छा मुसलमान अगर किसी किताबी औरत से निकाह कर लेता है तो उम्मीद की जा सकती है कि वो औरत भी आहिस्ता आहिस्ता उसको देखकर इस्लाम के करीब आएगी, वरना आज के दौर में तो इससे बिल्कुल ही अपोजिट कहानियाँ हो रही हैं कि जब ऐसी औरतें मुसलमान मर्दों के निकाह में आती हैं और उनको उनके अंदर वो चीज़ नहीं दिखती जो इस्लाम में होनी चाहिए, तो फिर वो और ज़्यादा इस्लाम से दूर होने लगती हैं। हाँ, कल इस्लाम ग़ालिब आ जाए, दुनिया में इस्लाम का गलबा हो और चारों तरफ इस्लामी कवानीन हो, तो फिर इस मामले में ज़्यादा आसानी के साथ अमल किया जा सकता है, ये सोच कर के चलें। ये भी एक तबलीग का तरीका है, तो माहौल का बहुत गहरा असर होता है। और बाकी रहेगी बात कि कुछ लोग जो सिर्फ ऐसी शादियां कर लेते हैं कि किसी मुल्क की नेशनलिटी लेने के लिए, वहाँ लीगल होने के लिए, तो फिर ये तो बिल्कुल एक किस्म की मुता की किस्म हो जाती है कि पेपर मैरिज कर ली और शादी का मकसद हल ना हुआ। तो अगर हम शादी के सारे मकासद सामने रखें तो फिर ऐसी किसी भी चीज़ की इस्लाम में रुख्सत नहीं है, वरना तो आप देखिए कि हर सोसाइटी में फिर कुछ ना कुछ औरतें हर वक्त ऐसी रहेंगी कि जो लोगों से वक्ती शादियां करने के लिए तैयार हों, और एक प्रोफेशन होगा। कोई भाई अपनी बहन के लिए ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन किसी के आज निकाह में तो कल दूसरे के निकाह में हो, तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को खोल दिया। फिर एक चीज़ पे तवज्जो दिलाना चाहूँगी, अगर आप आयत के आखिर में देखें
تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے جانے کی بات کر دی، یعنی ایسی شادیاں عموماً اس انسان کے اپنے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی ایسا نہ ہو کہ شادی تو کر لے انسان، لیکن اس کے بعد جو تھوڑا بہت بچا کھچا سا ایمان تھا دل میں مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اور بچپن سے دین کی باتیں کہنے سننے کی صورت میں، وہ بھی نہ چلا جائے۔ آپ اگر لفظوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو آیت 5 کا بالکل آخر کا حصہ اگر آپ دیکھیں، فرمایا کہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ خَبِتَ عَمَلُهُ، بس جس نے کفر کر لیا ہے ایمان کے بدلے تو اس کے اپنے عمل ضائع ہو گئے۔ یہ حصہ بتا رہا ہے کہ کسی کتابیہ سے نکاح کرنے میں کسی عام درجے کا جو مسلمان ہوتا ہے اس کے ایمان کو کتنا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کو کہ انسان اس سے اپنے آپ کو دور ہی رکھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے عمل کی باتیں ملتی ہیں، حالانکہ حضرت عمر کا دور جو تھا وہ اسلام کے غلبے کا دور تھا، پھر بھی اس کے باوجود ان کے دور میں آتا ہے کہ حذیفہ بن یمان جو تھے وہ مدائن میں گئے اور وہاں ایک یہودی عورت سے شادی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے شادی کی تو آپ نے فوراً ان کو ایک خط بھیجا جس کا خلاصہ کیا تھا کہ میں تمہیں طلاق کا حکم دیتا ہوں، اور ساتھ ہی کہا کہ میں اس کو حرام نہیں سمجھتا اس نکاح کو، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسی عورتیں عفت و پاک دامنی کے اندر کم ہوتی ہیں اور فحاشی اور برائی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور صحابی تھے طلحہ، انہوں نے بھی ایک کتابیہ سے نکاح کر لیا تو ان کو بھی حضرت عمر نے منع کیا کہ اس طرح سے ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ایسی عورتوں سے شادیاں کرتے رہو اور اپنی مسلمان عورتیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں۔ تو خلاصہ میرا خیال ہے کہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو صحیح طریقے سے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر کے خط کا ٹیکسٹ میرے سامنے آ گیا، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جب مدائن پہنچے تو وہاں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا۔ حضرت فاروق کو جب اس کی اطلاع ملی تو ان کو خط لکھا کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت حذیفہ نے جواب میں لکھا کیا وہ میرے لیے حرام ہے؟ تو پھر حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے جواب دیا، خط لکھا اور فرمایا کہ میں حرام نہیں کہتا، لیکن ان لوگوں کی عورتوں میں عام طور پر عفت و پاک دامنی نہیں ہوتی، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ آپ لوگوں کے گھرانے میں اس راستے فخش اور بدکاری داخل نہ ہو جائے۔ اور امام محمد بن حسن نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو دوسری طرف تھوڑا سا ہلکا سا فرق سے لکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، یعنی آپ کو قسم دیتا ہوں کہ میرا یہ خط اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے کر آزاد کر دو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ دوسرے مسلمان بھی آپ کی اقتدا کریں۔ یہ ایک لیڈر تھے نا، تو کسی بھی سوسائٹی میں جو لوگ لیڈرشپ کے درجے پہ ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے حجت ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر ایسے لوگوں کو اگر آپ کو دیکھ کر وہ بھی یہ کام کرنے لگیں گے تو پھر اس سے فتنہ زیادہ پھیلے گا، اور اہل ذمہ اہل کتاب کی عورتوں کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں پر ترجیح دینے لگیں گے تو مسلمان عورتوں کے لیے اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی۔ یہ کتاب الآثار کے پیج 156 پہ لکھا ہوا ہے۔ تو خلاصہ میرا حل ہے کہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسی باتوں کو صحیح طریقے سے ہم آگے لے کے جانے والے بنیں۔
خان ربی کا رب العزت یما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تلاوت سنیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين